والسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो ये जो हमारी ये क्लास होती है हफ्ते को, ये हफ्ते के दिन जो होती है, ये बेसिकली है तो ये यूथ क्लास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर काफ़ी सारे बड़े लोग भी शामिल होते हैं, अंकल्स और आंटीज वगैरह भी होते हैं सुनने के लिए. ये ऑफ ऑन साइट भी होती है, जैसे हम जिस साइट पे बैठे हुए हैं ये हमारी यूजुअल साइट नहीं है. यूजुअली ये क्लास जो है हमेशा रियाज में होती है, लेकिन आज हम सफ़र करके अल खुबर के इलाके में आए हुए हैं, जो कि सऊदी अरब के ईस्ट में एक शहर है. तो यहाँ पे हमारी आज क्लास है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ पे सफ़र पे आने का, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जिनसे बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी, और कुछ जो है वो नए दोस्तों से भी मुलाकात हुई. लेकिन सफ़र के अंदर फिर एक डाउन साइड भी होती है. वो क्या होती है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, सफ़र कर रहे होते हैं, तो आपकी मसरूफियत जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपका स्केड्यूल जो होता है ना, आपकी रूटीन जो होती है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है. तो उसकी डाउन साइड ये हुई है, मैं पहले से एडमिट कर लूँ आपके सामने, कि क्लास के लिए जो पहले से एक तैयारी करनी होती है उसका मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला आज. सही है, तो मैं अभी बैठ गया हूँ बस आपके सामने किताब खोल करके, ये देखी जाएगी. तो बहुत शॉर्ट टाइम था वापसी पे भी रवाना होना है, और मुलाकात लोगों से ज़्यादा करनी थी, कुछ ऐसे काम थे. तो बहरहाल अल्लाह ताला मदद फरमाए. सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास में, रियाज में जब होती है, तो आप लोगों की तरह काफ़ी सारे माशाल्लाह बच्चे बैठे होते हैं सामने. तो हम जो है वो क्लास की इब्तदा हमेशा ऐसे करते हैं कि बताएं कि पिछली क्लास में क्या बात हो रही थी, आखिरी बात हम क्या डिस्कस कर रहे थे. तो ऑनलाइन जो है वो चैट विंडो के ऊपर लिख करके जवाब दे सकते हैं, और जो सामने मौजूद होते हैं वो हाथ उठा करके फिर उसके बाद जवाब दे सकते हैं. किसी को याद है आखिरी दफा हम क्या बात कर रहे थे, या कम से कम यही कि हम नबी अलैहिस्सलाम सलाम की जिंदगी में. लोग मिलने आते थे, तो इसका नाम याद है जो मिलने आते थे, तो ये कौन सा वाला साल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, कौन सा वाला साल था? इन्होंने जवाब दिया यहाँ पे बॉयज के ग्रुप पे, आमुल वफूद. आम कहते हैं साल को, ईयर, द ईयर ऑफ द डेलीगेट्स. ठीक है, वफूद. तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो ट्रैवलिंग वगैरह करते थे ना, सफर के लिए जाते थे या जिहाद के लिए जाते थे, वो सब अब खत्म हो गया था. अब एक सफर बाकी रहता है, हज का सफर, जो कि अब हम इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन बाकी सारे सफर खत्म कर दिए थे. अब आप जो है वो अपने घर में ज्यादा टाइम रहते थे, और लोग आप से मिलने के लिए ज्यादा आया करते थे, वजह से आप कहीं और जाए. ठीक है, माशाल्लाह हम अपने मशाइख को देखते हैं, मशाइख की भी जिंदगी में ऐसे ही होता है. हम अपने जो हमारे हजरत हैं पीरुल फकार अहमद नक्शबंदी रात, हम सारी जिंदगी सफर करते रहे, कभी किसी मुल्क में जा रहे हैं, कभी किसी मुल्क में जा रहे हैं, घर में तो बैठते ही नहीं थे पूरे साल में, शायद 2 महीना टोटल जो है वो घर में बैठते थे. लेकिन अब ये मामला है कि सफर कम हो गए हैं, घर में ज्यादा रहते हैं, और लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं. ठीक है, तो बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर हमारे मशायख का अमल हमें अल्हम्दुलिल्लाह नजर आता है. प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि कैसे आप जिंदगी गुजारा करते थे. तो बहुत सारे वफूद के बारे में हम पिछली 2 क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि फलाने कबीले से ये वफद आया, उसने कैसी बातें करी, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको क्या जवाब दिए, क्या हुआ सब कुछ. ठीक है, और एक दो जो थे वो आज हम आपके सामने बयान करते हैं, और फिर उसके बाद के हज के बारे में बात शुरू होगी. तो एक जो इंटरेस्टिंग वफद का किस्सा है, वफद का, वो है कबीला अज्द. अज्द ये एक ट्राइब था, उसका नाम था अज्द. तो इसके जो है ना वो 7 लोग डेलीगेट के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के पास डेलीगेशन की सूरत में हाजिर हुए। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को देखा ना, तो नबी अलैहिस्सलाम को बड़े अच्छे लगे ये लोग, ठीक है, कि बड़े अच्छे लिबास में हैं, बड़े अच्छे वजाकता के अंदर हैं, और इनका गेटअप जो है वो बड़ा आपसे पसंद आया। और ये लोग बड़े काम थे, सुकून के साथ थे। इतने होते ना, आप सफर के साथ आ रहे हैं तो आप बहुत परेशान होते हैं, आपकी हलिया भी खराब हुआ हुआ होता है, और मिट्टी धूल और सब कुछ, ये बड़े इत्मीनान के साथ थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको देख करके फरमाया कि तुम कौन लोग हो, आइए बैठिए, कि आप कौन लोग हैं। तो वालेकुम सलाम अल्लाह। तो उन्होंने अर्ज किया कि जवाब देखें क्या जवाब देते हैं। उन्होंने कहा हम मोमिन हैं, हम बिलीवर्स हैं, हम ईमान वाले हैं, है ना। यानी ये नहीं बताया कि हम कबीला अस से आए हैं और मेरा नाम ये है और उसका नाम ये है, हम मोमिन हैं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, वो उनकी बात सुनकर वो मुस्कुराए, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जवाब, बड़ा नया जवाब दिया, दूसरे लोग कैसे जवाब नहीं देते कि हम मोमिन हैं। तो आप ससरम फरमाए, मुस्कुराए और फरमाया कि तुमने जो ये कहा है कि तुम ईमान वाले हो, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, इसकी हकीकत तो बताओ कि ईमान की हकीकत क्या है, ये भी तुम्हें कुछ पता है, ठीक है, या बस तुमने सुनी सुनाई वैसे हम भी मोमिन है, तो तुमने भी कह दिया हम भी मोमिन है। तो आपसे पूछा कि तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो है ना, वो पांच क्वालिटीज हैं, पांच खसलतें हैं हमारे अंदर, सही है, जिनमें से पांच तो वो हैं कि जब आपके मैसेंजर्स, आपके कासिद हमारे पास आए थे ना, तो उन्होंने हमें वो पांच बातों के ऊपर अमल करने के लिए कहा था, पांच बातें बताई, ठीक है, 15 में से 5 उन्होंने कहा ना, हमारे अंदर 15 क्वालिटीज हैं, उनमें से पांच वो हैं जो कि आपके लोग हमारे पास आए थे, तो उन्होंने हमें उनके ऊपर बिलीव करना सिखाया था, ठीक है। तो नबी रसूल ने पूछा कि वो पांच कौन सी हैं जो मेरे कासिदों ने तुम्हें बताई थी। तो इन्होंने कहा कि वो पांच बातें जिन पर आपके मैसेंजर्स ने हमको अमल करने के लिए कहा था, वो ये हैं कि अल्लाह पर ईमान लेकर के, ठीक है, अल्लाह पर ईमान लेकर के, नंबर 1। अल्लाह पर ईमान का मतलब क्या है, कोई आप इसे बता सकता है, ऑनलाइन या ऑन साइट, अल्लाह पर ईमान लेकर के आए तो क्या मतलब होता है। माशाल्लाह, ऑनलाइन भी काफी लोग हैं। अल्लाह पर ईमान अगर कोई कहे तो इसका मतलब क्या होता है। कल कुदरतन जुमे के बयान में भी यही टॉपिक था, ईमान के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है, और यकीन करें मैंने अभी पढ़ा ही है मुझे नहीं पता था कि आज इसके ऊपर बात होगी, तो यही टॉपिक पूरा का पूरा सीधा क्लास के अंदर भी आ गया। तो अल्लाह पर ईमान का मतलब क्या है, जी माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त उन्होंने अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया बल्कि, टू नो दैट अल्लाह एग्जिस्ट, ठीक है, कि अल्लाह ताला है, सही, यानी ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है ना, ये खुद ब खुद नहीं चल रही, ये खुद ब खुद नहीं बन गई है, ठीक है, बल्कि कोई इसका बनाने वाला है, कोई इसका चलाने वाला है, क्रिएटर है, सस्टेनर है इसका, ठीक है। तो अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है, ये है अल्लाह ताला के ऊपर ईमान। लेकिन और भी बातें जैसे इन्होंने लिखी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, यानी अल्लाह ताला ये जो पूरा का पूरा कायनात का निजाम चला रहे हैं, ये किसी के हेल्प से नहीं चला रहे, नो वन इज हेल्पिंग अल्लाह सुब्हान ताला टू डू दिस, अल्लाह ताला अकेले ये सारा का सारा काम चला रहे हैं, ठीक है। तो फिर फरिश्ते क्या करते हैं, अल्लाह ताला सारा काम चला रहे, तो हमने तो सुना था फरिश्ते ये वाला काम करते हैं, फरिश्ते वाला काम करते हैं, फरिश्ते वाला काम करते हैं। तो ये भी तो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया ना, उन्होंने हमें बताया कि फरिश्ते ये बारिश बरसाते हैं, ये जो है वो लोगों की जान निकालते हैं, ये जो है वो लोगों को दुनिया में भेजते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फरिश्ते। तो अल्लाह जब सब काम कर रहे हैं तो फरिश्ते फिर क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब कि फरिश्ते जो है वो असबाब है, असबाब है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है अभी बच्चों की क्लास के लिए, तो बड़ा मुश्किल वर्ड है, असबाब है, ठीक है। तो कोई आसान सा वर्ड बताएं जो कि सबके समझ में आ जाए, फरिश्ते हुक्म की तामील करते हैं। तो मतलब फरिश्तों का रोल क्या है, फरिश्तों की क्या पोजीशन है इस कायनात के अंदर, जब अल्लाह ताला सब कुछ कर रहे हैं तो फरिश्ते क्या करते हैं। तो फरिश्ते क्या हैं, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह ने अपने लिए गुलाम बनाए, अल्लाह फरिश्तों, अल्लाह ताला उनसे काम करवाते हैं, तो क्या वो अल्लाह ताला के हेल्पर्स हैं? जैसे कि अब्बू आपसे काम करवाते हैं घर में, है ना, आप ये काम करते हैं, आप वो काम करते हैं, करवाते हैं ना आपसे काम, तो आप तो अब्बू के हेल्पर कहलाएंगे, सारे काम अब्बू नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मम्मा जो है वो आप ही से काम करवाती हैं, घर में आप ही आपके भी होंगे कोई ना कोई, ठीक है ना। तो मम्मा आप ही से काम करवाती हैं, तो आप ही मम्मा की हेल्पर होती हैं, अम्मी की हेल्पर होती हैं, ठीक है। बेटा या बेटियां भी अब्बू की हेल्पर होती हैं, तो क्या फरिश्ते अल्लाह ताला के हेल्पर्स हैं? क्या है फरिश्ते? तो हेल्पर्स नहीं, फरिश्ते अल्लाह ताला के हेल्पर्स नहीं है, ठीक है ना, बल्कि फरिश्ते अल्लाह ताला के क्या हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला के स्लेव्स हैं, ठीक है, गुलाम हैं, नौकर हैं। अल्लाह ताला को उनके हेल्प की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला उनके बगैर सारे काम खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। अकेले अल्लाह ताला हर काम कर सकते हैं, चाहे वो बारिश बरसाना हो, चाहे वो चूटियों को खाना खिलाना हो, चाहे वो फिश को खाना खिलाना हो, चाहे वो हमें खाना पहुंचाना हो, सारा काम अल्लाह ताला खुद कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। अल्लाह ताला डज नॉट नीड एनी एंजल्स, किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं, ठीक है। फरिश्ते फिर क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया कि फरिश्तों तुम काम करो, तुम करोगे तो मैं तुमसे खुश रहूंगा, तुम अगर मेरे काम से इनकार कर दोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, ठीक है, आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, सही है। तो फरिश्ते बस अल्लाह ताला की मर्जी है, इसको क्या कहते हैं? अल्लाह ताला की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला की मर्जी है, ठीक है ना, कि फरिश्तों से काम करवाना है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कोई काम होता है घर के अंदर जो कि अब्बू खुद भी कर सकते हैं, सही है, लेकिन अब्बू चाहते हैं कि भाई बेटा कोई काम करे, बेटी कोई काम करे, है ना। ये कोई थोड़ी है कि अब्बू को कोई जरूरत है कि बेटा काम करेगा, बेटी काम करेगी तो काम होगा, नहीं करेगी तो काम नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है ना, फरिश्तों का ये मामला है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हेल्पर्स नहीं है, फरिश्ते अल्लाह ताला के सर्वेंट्स हैं, स्लेव्स हैं। बल्कि सर्वेंट्स में और स्लेव्स में क्या फर्क होता है, किसी को पता है? सर्वेंट का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, उसको खादिम कहते हैं, नौकर कहते हैं, और एक होता है गुलाम या स्लेव, अरबी में क्या कहते हैं? अब्द, अब्द कहते हैं स्लेव को, ठीक है। तो फर्क क्या है अब्द में और खादिम में, क्या फर्क है? ठीक है, गुलाम इज फॉर एवर, अच्छा ये भी अच्छा फर्क उन्होंने बताया कि गुलाम इज फॉर एवर, अब्द स्लेव इज नॉट फॉर एवर, स्लेव जो है वो कभी छोड़ के भी जा, सॉरी सर्वेंट इज नॉट फॉर एवर, ठीक है, सर्वेंट जो है ना वो छोड़ करके भी जा सकता है, वैसे तो गुलाम भी छोड़ के जा सकता है। सर्वेंट वर्क फॉर ए लिमिटेड पीरियड, नहीं, बल्कि सही जवाब इन्होंने दिया कि सर्वेंट्स आर पेड टू वर्क, ठीक है ना, सर्वेंट को आप कुछ पैसे देते हैं तो वो पैसे के बदले में आपका काम करता है ना, आप उसको सैलरी देते हैं ना, ठीक है। स्लेव को कोई सैलरी नहीं देते, स्लेव की कोई सैलरी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स की तरफ से जवाब आया कि वो अल्लाह के हुक्म पे काम करते हैं, अल्लाह का निजाम है, इस जरिए से काम करवाना, ठीक है, बस सही। तो ये फर्क है स्लेव्स में और सर्वेंट्स में। तो फरिश्ते जो है ना वो असल में अल्लाह ताला के सर्वेंट्स भी नहीं है, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह ताला के स्लेव्स हैं, ठीक है। अल्लाह ताला फरिश्तों को कोई इनाम भी नहीं देते, हम में और फरिश्तों में क्या फर्क है, किसी को पता है? आज मैंने क्लास ऐसी निकालनी है, लगता है कि पढ़ा तो है नहीं। मैं बता रहा था बच्चों को शुरू में कि वो ट्रैवल में ना फिर वो होता है कि टाइम आपके पास बहुत कम होता है, तो जो क्लास की तैयारी करनी होती है वो होती है, लेकिन खैर, तो अब अकायद की क्लास हो जाए, कल बयान भी अकायद की हो गया था, आज आपको बता, जो वाकया है ना सीरत के अंदर वो अकायद के ऊपर ही आ गया, मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। एंजल्स आर एंजल्स एंड ह्यूमंस आर ह्यूमंस, माशाल्लाह, व्हाट आर व्हाट एन आंसर, या तो स्कूल से सीखा है लगता है। कहते हैं ना भाई, फलानी चीज कहाँ पड़ी हुई है, तो उसकी तो हमने क्या जवाब सीखा था, मैंने कहा था ये आसमान के नीचे जमीन के ऊपर। तो हर चीज आसमान के नीचे जमीन के ऊपर है, तो आपका भी जवाब ऐसे ही है, एंजल्स डोंट गेट एनी रिवॉर्ड, वेयर एज अस ह्यूमन बीइंग्स अल्लाह ताला रिवॉर्ड्स अस, ठीक है ना। जब हम कोई काम करते हैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म पर, तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, सवाब मिलता है, सवाब क्या है? रिवॉर्ड है, ठीक है। और जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो फिर उसके ऊपर पनिशमेंट भी मिलती है, लेकिन रिवॉर्ड मिलता है। फरिश्तों को जो है ना वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है ना, दे आर जस्ट बाउंड टू डू थिंग्स। वो उनके पास इख्तियार ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला की बात को ना माने और काम को ना करें। बहरहाल, तो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान के का मतलब ये है कि अल्लाह ताला है और सब कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, अल्लाह ताला का कोई हेल्पर नहीं है और अल्लाह ताला किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और इसके अलावा बहुत सारी बातें, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये सब क्या है? अल्लाह ताला के ऊपर ईमान है, ठीक है। तो इन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि पांच बातें जो आपके मैसेंजर्स ने हमें सिखाई थी, उनमें सबसे पहली बात यह है अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर के आओ, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लेकर के आओ, ठीक है। तो फरिश्तों के ऊपर ईमान की बात,
अल्लाह
अल्लाह सर्वेंट
एमीन।
के स्लेव्स हैं, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन जो लोग हैं वो खाली लिख के जवाब दे सकते हैं, ठीक है, बोलेंगे तो फिर वो एक हो जाएगा। चले, फिर उसके बाद तीसरी चीज फरमाई कि जो अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई हैं अपने मैसेंजर्स के साथ, है ना, वो कौन कौन सी किताबें हैं? सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी किताब है कुरान मजीद, उसके ऊपर ईमान लेकर के आना कि ये अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है। तौरात, ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजी थी, ठीक है, जिसको के टोरा भी कहते हैं या ओल्ड टेस्टामेंट भी गालबन कहते हैं, मुझे इतनी इसकी तफसील नहीं पता। और एक किताब जो बहुत मशहूर है इंजील, ठीक है, बाइबल भी उसको कहते हैं, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने भेजी, या न्यू टेस्टामेंट कहते हैं वगैरह। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी जो है वो कुछ पेपर्स वगैरह भेजे थे, सहाइफ जिनको कहते हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जो जबूर एक किताब थी, ठीक है, वो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ भेजी थी। तो इनके ऊपर ईमान लाना कि ये किताबें अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है, सही है। बाकी जो किताबें, ये मेरे हाथ में जो किताब है, ये अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब नहीं है, ये किसी इंसान ने ये किताब लिखी है, ठीक है, तो इसको अल्लाह की किताब नहीं कह सकते, लेकिन ये सब जो है वो अल्लाह की किताब है, इन पे ईमान लाना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के पैगंबरों के ऊपर ईमान लाना, सही, कि अल्लाह ताला ने मैसेंजर्स भेजे, ठीक है, प्रॉफिट्स भेजे, ठीक है, जो क्या काम था उनका कि वो दुनिया के अंदर लोगों को वो तरीका सिखलाएं कि जिस तरीके से अल्लाह ताला उनके उनसे प्लीज होता है, उनसे खुश होता है, और उनको बताएं कि कौन से वाले तरीके हैं जिनसे कि अल्लाह ताला नाराज होते हैं, ठीक है, ये तरीके कौन बतलाएगा? ये अल्लाह ताला ने प्रॉफिट्स को या मैसेंजर्स को भेजा कि तुम जाकर के मेरे बाकी बंदों को ये तरीके बताओ, ठीक है। तो मैसेंजर्स का ये काम है, तो इसके ऊपर ईमान लाना कि अल्लाह ताला ने मैसेंजर्स भेजे हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, वही हमें सही तरीका बताएंगे, कामयाबी किस में है, नाकामी किसके अंदर है। हम अपने अकल से कामयाबी के तरीकों को नहीं समझ सकते, ठीक है ना, वरना अकल तो हर इंसान के पास है, ठीक है, अकल से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने ब्रेन से जो है वो हम फाइनल नहीं कर सकते कि ये हमारे फायदे की चीज है और ये हमारे नुकसान की चीज है, हमें मैसेंजर से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैसेंजर्स के ऊपर ईमान लाना, और उसके बाद फिर मरने के बाद जिंदा होने के ऊपर, वल बासी बादल मऊत, मरने के बाद हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला हमें मौत के बाद दोबारा से जिंदा करेंगे और हमारा हिसाब किताब होगा, पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया के अंदर क्या किया, ठीक है, सारा का सारा हिसाब किताब होगा। तो ये जो है ना, पांच चीजें आपके पैसेंजर्स ने हमें बताई थी, हम उनके ऊपर ईमान लेकर के आए, ठीक है। तो अब क्या स्टोरी चल रही है कि एक वक्त आया अज़द का नबी अलैहिस्सलाम के पास, और बड़े अच्छे लोग लग रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम बड़े इंप्रेस हुए उनको देख करके, बड़े सुकून के साथ थे। तो आपसे हमने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग कौन हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम मोमिन हैं। पहली दफा किसी ने ऐसे जवाब दिया था, नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए कि ये किस लोग हैं, इन्होंने जवाब दिया है, मुस्कुराए और फिर पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारे इस मोमिन होने का, इसकी हकीकत मुझे बताओ। तो फिर उन्होंने बताया कि हम 15 बातें हमारे अंदर हैं जिनकी वजह से जो है ना वो हम मोमिन है। तो आपसे कौन सी वो 15 बातें? तो उन्होंने बताया पांच बातें वो जिनके आपके मैसेंजर्स ने हमें कहा था कि इनके ऊपर ईमान लेकर के आओ। कौन सी पांच बातें? तो ये पांच बातें, आमन तो बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही रसूल ही वल यौमिल आखिर, ठीक है, वल बास बाद मौत भी यौमिल आखिर के अंदर ही शामिल भी कर सकते हैं आप इसको। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि और पांच बातें कौन सी हैं? तो इन्होंने कहा कि पांच बातें मजीद जो है ना वो थी जो कि आपके लोगों ने हमें कहा कि उनके ऊपर हमें अमल करना है, ठीक है। अभी कौन सी 5 बातें थी? इनके ऊपर अमल करना था। तो पहली वाली 5 बातें थी, इनके ऊपर अमल। कुदरतन कल का बयान पूरा रिपीट हो रहा है। अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, ठीक है। तो ईमान लाने का मतलब अमल करना होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं, ईमान लाने का मतलब क्या होता है? अमल करना। टू बिलीव, नहीं, दिस इज जस्ट ए ट्रांसलेशन, ठीक है। मुझे समझाएं कि ईमान लाने का मतलब क्या होता है? गुलाम, टू नो 100%, टू नो 100%। ईमान लाने का मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर बिलीव करें, ठीक है। तो बिलीव करने का क्या मतलब होता है? बहुत ही आसान लफ्जों में कोई बता सकता है बिलीव करने का क्या मतलब है? ये चीज क्या ट्रस्ट इट्स ऑथेंटिसिटी, और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया आपको। ट्रस्ट, मानना। ईमान लाने का मतलब जो है ना, बहुत ही आसान तरीन अल्फाज में, भाई किसी ने तो कल के वो मिक्सलर का अकाउंट देखा है, देखी थी, तो 120 लोग थे कल के बयान में, तो किसी एक ने भी बात नहीं सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ नहीं सुनी है। तो हम ये जवाब दे रहे हैं कि ईमान लाने का मतलब होता है, यानी अल्लाह पर ईमान लाना, या फरिश्तों पर ईमान लाना, या रसूलों पर ईमान लाना, इसका मतलब ये होता है अपनी सोच उनके बारे में ठीक कर, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, ठीक है ना, थिंकिंग जो है ना आपकी, वो सही हो उनके बारे में, जैसे मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वैसी हो, इसको कहते हैं ईमान लेकर ख्याल, ठीक है ना। तो फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये नहीं है कि एंजल्स हैव विंग्स, और ठीक है, विंग्स तो एक्चुअली है भी, ये तो मैंने भी रसूल ने बताया कि एंजल्स के पास विंग्स भी होते हैं, ठीक है ना। जबरील अलैहिस्सलाम के पास कितने थे? 600, 600 विंग्स थे। तो फरिश्तों के पास विंग्स होते हैं, ये तो है, सही है, लेकिन फरिश्ते जो है वो गर्ल्स होती हैं, राइट। तो फरिश्ते गर्ल्स होती हैं? नहीं, फरिश्तों के बारे में ये सोचना कि फरिश्ते गर्ल्स होती हैं, नहीं, ये फरिश्तों पर ईमान लाना है, ठीक है। फरिश्तों के बारे में ये सोचना कि उनके पास जो है वो एक स्टिक होती है, ठीक है, मैजिक वैंड होता है, और वो जो है ना वो आकर टन ऐसे करती हैं, तो उससे जो है ना वो एक स्पार्कल्स बनते हैं और फिर कुछ हो जाता है, ठीक है ना। फेरीज कहते हैं अंग्रेजी में उसको, सही है। उनके फेरीज के पास एक बैंड होता है, मैजिकल बैंड, उसके आखिर में एक स्टार लगा हुआ होता है, तो यूं करके करेंगे और टन करके आवाज आती है, और उसके बाद कुछ हो जाता है, सही है। फरिश्तों के बारे में हमने अगर ये सोचा कि फरिश्ते ऐसे होते हैं, ये क्या फरिश्तों पर ईमान लाना कहलाएगा? नहीं, क्यों नहीं कहलाएगा फरिश्तों पर ईमान लाना ये? क्योंकि क्योंकि अभी कहा मैंने, क्यों नहीं ये फरिश्तों पर ईमान लाना कहलाएगा? क्या वजह थी जी, जल्दी से बता दें, बस मेरे अपने वर्ड रिपीट कर दें, ठीक है। बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस अबाउट द फरिश्ते, अबाउट द एंजल्स। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें एंजल्स के बारे में ये चीज नहीं बताई है कि उनके पास एक मैजिक वैंड होता है, और उसके आखिर में एक स्टार लगा हुआ होता है, और उससे जो है वो टन करके मारते हैं, और उससे स्पार्कल्स निकलते हैं, और फिर चीज हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ नहीं बताया हमें एंजल्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम एंजल्स के बारे में ऐसे सोचेंगे, क्यों? क्योंकि डिज्नी के कार्टून के अंदर ऐसे देखा था, राइट। तो भाई ये तो फरिश्तों के बारे में डिज्नी वालों ने बताया, राइट। ये तो फरिश्तों के बारे में जो है वो किसी इंडियन फिल्म ने बताया, राइट। नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं बताया ना, नबी अलैहिस्सलाम ने तो जो बातें बताई हैं, हम तो उनके बारे में जब सोचेंगे कि ये है फरिश्ते, तब होगा कि वो हम फरिश्तों पर ईमान लेकर के आए, वरना फरिश्तों पर ईमान नहीं लेकर के आए, ठीक है। ये आपकी बरकत से अल्लाह ने अभी दिल में डाला है, लेकिन आपको बात भी समझ में आ जाए, बरकत तो आप ही की है लेकिन बात आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर फरिश्तों के ऊपर हमारा ईमान खराब हो गया तो क्या मतलब है इसका? जी पुराने स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, अगर हमारा फरिश्तों के बारे में ईमान खराब हो गया तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बहुत खतरनाक है, इसका मतलब बहुत खतरनाक क्या है कि इट्स पॉसिबल कि अब हम मुसलमान नहीं रहे, अब हम मुसलमान नहीं रहे। जब मुसलमान नहीं रहे तो फिर क्या होते हैं? जब कोई मुसलमान नहीं होता तो वो क्या होता है? नॉन मुस्लिम होता है, काफिर होता है। जब वो मुसलमान नहीं होता कोई, तो वो काफिर होता है। और काफिर किधर जाएगा मरने के बाद? जहन्नम में जाएगा। और फिर क्या वो जहन्नम से कभी निकलेगा? कभी भी नहीं निकलेगा वो जहन्नम से, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, वो कभी भी जहन्नम में से नहीं निकल सकेगा। ठीक है? Now what does it tell us about Disney movies? अब इसका जो है ना वो सम टोटल असल मकसद जो है ना वो आप बता दें, what does it tell us about Disney movies? ठीक है कि अगर हमने डिज्नी मूवीज देखी और डिज्नी मूवीज देखने की वजह से फरिश्तों के बारे में हमारी ये सोच बन गई कि फरिश्ते ऐसे होते हैं जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया था, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा कि फौरन बंदा काफिर हो जाएगा और जहन्नुम में चला जाएगा, नहीं, हमारा ईमान खतरे में पड़ गया और पॉसिबल है कि अब जो है ना वो बंदा मुसलमान नहीं रहा, अब वो काफिर हो चुका है। और अगर मरने से पहले पहले वो दोबारा ईमान नहीं लेकर के आया, यानी फरिश्तों के बारे में अपनी सोच को उसने ठीक नहीं किया, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम चला। तो जिनको जहन्नुम से बचने की फिक्र है तो क्या वो आइंदा डिज्नी मूवीज के करीब जाएंगे? नहीं, वो डिज्नी मूवीज का तस्वीर ही कोई नहीं है ईमान वाले की जिंदगी के अंदर। इट्स नॉट फनी, राइट? इट्स नॉट समथिंग फॉर फन, इट्स समथिंग एज सीरियस एज जन्नत और जहन्नुम। जिस बच्चे का बचपन से ये ईमान बन गया, ये सोच बन गई फरिश्तों के बारे में कि फरिश्ते तो ऐसे होते हैं, ठीक है ना, अब वो बड़े होकर के भी फरिश्तों के बारे में ऐसी सोच रहा होता है, ठीक है ना, जिसका ये ईमान बन गया, अच्छा आइंस्टाइन के ऊपर ईमान बन गया क्योंकि इतनी सारी इंजीनियरिंग पढ़ी है, इतनी सारी साइंस पढ़ी है, तो ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो फरिश्ते किधर चले गए? फरिश्ते तो कोई काम नहीं कर रहे, वो तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ने जो बताया उसके मुताबिक काम हो रहा है। तो जो साइंस के अंदर, मैं ही नहीं कह रहा साइंस नहीं पढ़े, हम खुद पढ़ाते हैं साइंस, है मोहम्मद साहब भी बैठे होते हैं बहुत सारे बच्चे, मैं खुद पढ़ा रहा होता हूँ साइंस, ठीक है ना, और दूसरे अंकल्स भी जो है वो स्कूल में भी जाके साइंस पढ़े होते हैं, मैं ही नहीं कह रहा नहीं साइंस पढ़े, लेकिन रिमेम्बर स्पेशली नॉट जस्ट किड्स, मैं तो बड़ों से बात कर रहा हूँ, बड़े लोग याद रखें कि साइंस जो आप पढ़ाए हैं ना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि साइंस की वजह से बच्चों के जहन में ये तस्वुर ना बन जाए कि फरिश्ते तो बेकार की बात है, ये फरिश्ते को थोड़ी करते हैं, ये तो मैग्नेटिक पुल करता है, ये तो फलानी एनर्जी करती है, ये तो फलाना जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये फलानी फिनोमिना की वजह से ऐसा हो रहा होता है, और फलानी वजह से ऐसा हो रहा होता है। नो मेंशन ऑफ फरिश्ते, ठीक है ना, तो आपने बेसिकली फरिश्तों का इनकार कर दिया। इट्स पॉसिबल कि उसके बाद आपका ईमान खत्म हो चुका, आपका ईमान खत्म हो चुका है, ठीक है, तो वी हैव टू रियलाइज कितनी अहम बातें हैं ये ना, ठीक है, तो ईमान जो है ना वो खाली रटने से नहीं आता बल्कि इन चीजों की हक, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, देखिए आप उसवा हसना कहते हैं ना, हमारी क्लास में नहीं, बड़ों की गुफ्तगू बीच में शुरू हो जाती है काफी सारी, तो बच्चों के साथ माजत करता हूँ मैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों किससे सुना ना कि भाई हम मोमिन हैं, राइट, जैसे हम कहते हैं हम मोमिन हैं, राइट, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तुम मोमिन हो माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो हमेशा जन्नत में जाओगे, राइट, आपने सामने ऐसे नहीं किया, अगर माया कि भाई तुम जो क्लेम कर रहे हो प्रूव इट, राइट, टेल मी अबाउट इट, इसकी हकीकत मुझे बताओ, सही है, तो खाली कह देना कि मैं मोमिन हूं, ठीक है, कह देना कि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ आप क्या समझते हैं, मैं मुझे भी पता है सब कुछ, भाई बताओ क्या पता है तुम्हें, कितना पता है, सही भी पता है कि गलत पता है? सही है। तो बहरहाल, तो कुदरतन अल्लाह की मर्जी के ईमान के ऊपर ही जो है ना वो आमुल वसूद के अंदर सारा का सारा वाक्य आ गया। तो इन्होंने पांच बातें बताई कि पांच बातें उन्होंने हमें कहा कि हम उनके बारे में सोच वैसी रखें जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने बताई, अल्लाह के बारे में जो सोच बताई है, रसूलों के बारे में, मैसेंजर्स किताबों के बारे में, आखरत के बारे में, बुक्स के बारे में, वो सोच रखनी है जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने बताई। ये सोच, इसको बिलीफ कहते हैं। अगली पांच बातें कौन सी हैं? अगली पांच बातें जो है वो अमल करने की बात है कि हमने करना क्या है, एक्शन क्या करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर बताया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। वो सोच तो पहले से बन चुकी थी ईमान के अंदर, लेकिन अब ये है जुबान से भी कहो, एक्शन, जुबान का एक्शन है ना, सेइंग समथिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद फरमाया दूसरी चीज, सबको पता है, नमाज कायम करो। ठीक है, नमाज पढ़ो, ये करने का काम है। सही है, तीसरी चीज जकात दो। सही है, यानी तुम्हारे पास जितनी वेल्थ है उसका जो है वो 2.5% अल्लाह ताला के, बहुत जो गरीब बंदे हैं जिनके पास जो है वो 72.5 ग्राम सिल्वर के बराबर भी पैसे नहीं है, या 7.5 तोले सोने के बराबर भी पैसे नहीं है, उनको तुम 2.5% अपने वेल्थ में से निकाल करके हर साल एक दफा कम से कम दिया करो, ये इसको जकात देना कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जब रमजान मुबारक का महीना आए तो तुम रोजे रखो, यानी खाना पीना छोड़ दो सुबह से लेकर के मगरिब तक। ठीक है, तो ये रोजे रखना ये भी एक अमल है। सही है, और उसके बाद फिर अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और तुम्हारे पास हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, और तुम्हारे घर पे तुम्हारी गैर मौजूदगी में टेक केयर करने वाला सिस्टम मौजूद है, तब तुम जा करके हज करो। ठीक है, अरफात जाओ, मुजदलफा जाओ, मिना में जाके क़याम करो, काबतुल्ला का तवाफ करो, उमरा करो, सही करो, सब कुछ करो, हज करो जा करके। ये सब क्या है? ये करने के काम है। ठीक है, ये कितने हो गए? पांच, करने के काम। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर एक और सवाल करके फिर हम अगले पांच के ऊपर आते हैं। वो ये है कि नमाज पढ़ना करने का काम है, रोजा रखना करने का काम है, जकात देना, हज अदा करना, ये करने का काम है। ठीक है, लेकिन इसका भी एक सोचने के साथ ताल्लुक है। हर करने के काम के साथ सोच भी तो एक होती है ना, कुछ सोचने का भी ताल्लुक होता है। ठीक है, तो इनके साथ भी बिलीफ है एक। नमाज के साथ क्या बिलीफ है? नमाज है तो एक एक्शन, एक अमल है, लेकिन व्हाट इज द बिलीफ अटैच्ड विद नमाज, विद सलात। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए हुए हैं जो कि मैं इतने नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो व्हाट इफ समवन सॉ ए ड्रीम रिगार्डिंग एंजल्स एंड टेल समथिंग अबाउट देम लाइक देयर क्लोथ्स एंड हाई एंड हाई, कैन वी बिलीव देम? नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको बिलीव करने की। ड्रीम्स तो शरीयत के अंदर कोई हुज्जत नहीं होते, तो अगर वो कोई ऐसी बात कह रहा है जो कि नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बात के खिलाफ है, तो यू डोंट हैव टू बिलीव देम, यू शुडंट बिलीव। अगर कोई ऐसी बात है बिल्कुल भी बिलीव ना करें। ख्वाब का क्या है? मैं आज देखूं ख्वाब में बादशाह बन गया सऊदी अरब का, नहीं तो दिन में मैं सऊदी अरब का बादशाह बन जाऊंगा, आपको बिलीव करना जरूरी है मेरे ख्वाब के ऊपर कि जी आप ये बादशाह बन गए? क्या होता है भाई, ख्वाब देखने से क्या होता है? हमारे तो सुनाते तो हैं, ख्वाब देखोगे तुम बन जाओगे बादशाह, हर किसी बन सकते। इखलास के साथ करना, नॉट टू शो ऑफ टू पीपल। नहीं, बिलीफ क्या अटैच्ड है नमाज के साथ? बिलीफ, ईमान, वो नमाज के साथ क्या अटैच्ड है, क्या ताल्लुक है नमाज का ईमान के साथ? ठीक है, अगरचे के नमाज जो है वो एक एक्शन है, ये कोई सोच नहीं है, लेकिन नमाज के साथ एक सोच अटैच्ड है जो कि ईमान वाली सोच है। अगर है तो फिर ईमान है, और अगर नहीं है तो फिर ईमान नहीं है। जी, कि हम अल्लाह की इबादत, नहीं, ये सब नियत, इखलास, ये ईमान, ये नहीं, नियत और इखलास जो है ना इसका ताल्लुक ईमान के साथ नहीं। That we are giving respect to Allah. नहीं, देखें, एक्शंस के साथ। जी, यहाँ जवाब दिया बिल्कुल सही। ठीक है, गर्ल्स की तरफ से बिल्कुल सही जवाब आया है। जी, वो ये है कि नमाज जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि हम नमाज पढ़ें, ये फर्ज है कि हम नमाज पढ़ें, ठीक है ना। और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से पनिशमेंट मिलेगी, अल्लाह ताला नाराज होंगे हमसे। ये बिलीफ है अबाउट नमाज, अबाउट सलात, ठीक है। अगर हमारा ये बिलीफ हो कि नहीं, ये अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है, ठीक है ना, हाँ इट्स समथिंग नाइस टू डू, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, सही, जो अच्छे लोग हैं वो पढ़ते हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है नमाज पढ़ना। तो आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप उसको अल्लाह का हुक्म समझ के नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब क्या है कि ईमान खत्म, ठीक है, ईमान गया, क्योंकि आप अल्लाह का हुक्म समझ के तो नहीं पढ़ रहे, आप समझ रहे हैं कि हाँ भी समथिंग नाइस टू डू, कर लो तो अच्छा है, नहीं करो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, ईमान गया, खत्म हो गया। अच्छा, नमाजें कितनी हैं? पांच नमाजें। आप कहेंगे नहीं, मैं कहता हूँ चार नमाजें, ठीक है, ईमान खत्म हो गया। अच्छा, आप कहें कि नहीं पांच नहीं है, सात नमाजें हैं, ज्यादा पढ़ूंगा मैं, और मैं ज्यादा, मैं सात को फर्ज समझ करके पढ़ूंगा, कि अल्लाह ताला ने सात नमाजें फर्ज की, भाई ज्यादा इबादत कर रहे हैं ना आप, तो आपको तो ज्यादा टॉफी मिलनी चाहिए, ज्यादा कैंडी मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा आप पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्यादा नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज करी। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने पांच नमाजें बताई हैं पढ़ने के लिए, पांच को फर्ज कहा है। अगर आप कहेंगे मैं सात नमाजों को फर्ज समझता हूँ, ईमान खत्म हो गया, ईमान खत्म, ठीक है। तो अगरचे कि नमाज पढ़ना एक एक्शन है, लेकिन नमाज के बारे में आपकी सोच वो वही होनी जरूरी है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है, ठीक है ना। ये नहीं कि हम किसी और, ये खुद ही सोच लें कि नहीं सात नमाजें होती हैं, या कोई और आकर के बता दे कि जी 10 नमाजें फर्ज हैं, है ना, तो आप कहेंगे हाँ भी ये बता रहे हैं 10 नमाजें पढ़ते हैं, अच्छी बात है, 10 नमाजें पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला का हक बनता है कि 10 नमाजें पढ़ी जाए उसके लिए। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने 10 नमाजें नहीं बताई, ठीक है। तो ईमान क्या है? जो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने बताया है और जैसे नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने बताया है उसका यकीन रखना अपने दिल के अंदर और अपनी सोच उसके मुताबिक रखना, ये ईमान है, ठीक है। तो इन लोगों ने बताया कि जी आपके जो जो साथी हमारे पास आए थे उन्होंने हमें बताया था कि पांच एक्शंस भी हमें करने हैं, एक तो पांच फंडामेंटल बिलीव्स हो गए, फिर पांच एक्शंस भी हमने करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, वो नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि अच्छा तुमने तो हमें कहा था कि जी 15 बातें, तो अभी तो 10 हुई है ना, तो और पांच कौन सी बातें, ठीक है, जिनके ऊपर तुम लोग जो है वो बड़ी पाबंदी क्या करते हो उन चीजों की। तो इन लोगों ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, इन्होंने कहा कि मजीद पांच बातें वो हैं कि जब हमारे ऊपर कोई अच्छे हालात आते हैं या जब हमारे ऊपर जो है ना मुसीबत के हालात आते हैं, तो अच्छे हालात के अंदर हम शुक्र अदा करते हैं, ठीक है, और जब हमारे ऊपर मुसीबत के कोई हालात आ जाते हैं तो हम उसके ऊपर सब्र करते हैं, अच्छे हालात में शुक्र, बुरे हालात में सब्र, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि जब हमारा अपने दुश्मनों के साथ कभी मुकाबला होता है ना, ठीक है, तो हम उसके अंदर जो है ना वो साबित कदमी दिखाते हैं, यानी हम बड़े स्टेडफास्ट रह करके अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, हम भाग नहीं खड़े होते, हम कमजोरी नहीं दिखाते, हम बुजदिली नहीं दिखाते, ठीक है ना, हम उनका डट के मुकाबला करते, ठीक है, अपने दुश्मनों के साथ, सही है। और फिर तीसरी बात इससे भी अजीब, वो ये फरमाया इन लोगों ने कि अगर हमारे दुश्मन के ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाती है ना, तो हम उस पर भी खुश नहीं होते, दुश्मन पे भी मुसीबत आ जाए फिर भी हम खुश नहीं, मतलब ये कि एक तो होता है कि लड़ाई के अंदर जब आप दुश्मन से फाइटिंग कर रहे हैं ना, तो उस वक्त तो आप चाहते हैं कि दुश्मन हार जाए, आप गालिब आ जाएं, आप उसको मार दें, आप उसको हरा दें, तो जाहिर है आप यू आर कॉजिंग मुसीबत होने, है ना, आप उसको मार रहे हैं ताकि भाई वो लड़ाई खत्म हो और आप जो है वो गालिब आ जाए, ठीक है ना। उस वक्त तो भाई खुशी होती है कि जब हम जीत गए, राइट, जैसे आपके कोई टूर्नामेंट हो, कोई मैच हो, तो जब ओपोनेंट टीम होती है तो आप चाहते हैं ना कि आप जीत जाए, क्रिकेट का मैच हो या फुटबॉल का मैच हो, और जब वो हार जाता है तो जाहिर सी बात है आप जीत जाते हैं तो आपको खुशी होती है, उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि नॉर्मल हालात के अंदर जब दुश्मन अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अपने घर के अंदर रहता है, उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, तो क्या उस वक्त भी हमें खुश होना चाहिए? नहीं, उस वक्त खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा उनके साथ मुकाबला नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन्होंने ये तीन बातें कही कि हम राहत और फराखी के वक्त शुक्र करते हैं, मुसीबत के वक्त हम सबर करते हैं, दुश्मन से जब मुकाबला होता है तो हम साबित कदम रहते हैं, और दुश्मन की मुसीबत के ऊपर भी हम खुश नहीं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये लोग तो बड़े हकीम और बड़े आलिम हैं, बड़ा इल्म रखने वाले ये लोग हैं। ठीक है, और इनको जो है ना वो इतनी समझ हासिल है और तफक्को हासिल है। तफक्को कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से बात को समझना, बहुत गहराई में जाकर के बात को समझना, तफक्को हो फिर दीन, तफक्का फिर दीन। ठीक है, तो इसकी वजह से, क्योंकि इतनी अच्छी समझ रखने वाले लोग और इतनी हिकमत वाले लोग हैं, ये मकाम नबूवत से बहुत करीब है। यानी ये जो सिफात इनके अंदर है ना, ये तो नबियों वाली सिफात है, अगरचे कि ये नबी नहीं है, बट दे आर वेरी क्लोज टू दैट पोजिशन ऑफ नबूवत। अजीब। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुमको पांच खसलतें और बताता हूँ, पांच और क्वालिटीज तुम्हें बताता हूँ, ताकि तुम्हारी जो है ना वो 20 पूरी हो जाए। अभी तो तुमने 15 बताई ना अपने बारे में, मैं चाहता हूँ कि तुम 20 खसलतें अपने अंदर पैदा करो, तो फिर 20 जो है वो कोई अदद होगा कि ये भी पूरी हो जाएंगी। तो ये भी बड़ी अच्छी नबी अलैहिस्सलाम नसीहत फरमा रहे हैं लोगों को। फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली चीज कि जिस चीज को खाना ना हो उसको जमा ना करो। ठीक है, जिस चीज को खाना ना हो ना उसको जमा ना करो। अब इसकी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि भाई खामखा खाने की चीजें लाला करके ना घर के अंदर स्टफ ना करते रहो, स्टोर ना करते रहो। सही है, यानी खामखा की ग्रोसरी ला करके, अब ग्रोसरी जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, सड़ रही है, गल रही है, राइट। खूब सारा जो है ना वो दूध खरीद करके ले आए, और अब जाहिर है दूध की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो अब वो सारा दूध तो आप खत्म नहीं कर सकते, वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, या ये कि शादियों के अंदर जो है वो खूब सारा एक्स्ट्रा खाना बनवा लिया, और जो लोग इनवाइट किए वो कम थे, वो कितना खा लेंगे भाई, तो बाकी सारा खाना जो है ना वो फेंकता है, फिर उसके बाद जाया होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि जिसको तुम्हें खाना ना हो ना उसको जमा ना करो, यानी जितना तुम्हें खाने की जरूरत है उतना ही जमा करो, सही, उतना ही लेकर के आओ, खा करके खत्म करो काम काम को, फिर उसके बाद ना फ्रेश खाना ले आओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिज में कोई चीज नहीं रखें और हर मरतबा नया खाना बेगम साहिबा बनाए, ठीक है ना, नहीं, अब अल्लाह ताला ने फ्रिज दिया है तो अब आप जो है वो एक दफा दो दफा जो है वो फ्रिज के अंदर रख करके बाद में भी खा सकते हैं। ठीक है, भाई कोई और रीजन भी तो होते हैं ना बहुत सारे। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, इसका मतलब, तो मैं कहता हूँ मतलब फ्रेश खाना बनाना चाहिए, ठीक है, ये मतलब नहीं है इसका। बहरहाल जरूरत से ज्यादा स्टोर ना करो। अच्छा, दूसरी चीज फरमाई कि जिसमें तुम्हें रहना ना हो उसको बनाओ नहीं। ठीक है, रहना ना हो यानी जो तुम्हारे रिहायश के घर है ना, तो वहां पर तुम अपनी बिल्डिंग बनाओ, घर के लिए बनाओ, उसकी उसकी इजाजत है, उससे मना नहीं किया जा रहा, लेकिन बस जस्ट टू स्टैक अप है ना, कि भाई एक वो भी मेरा घर वहां पर भी खाली पड़ा हुआ है, मेरा वहां पर भी घर खाली पड़ा हुआ है, वहां पर रहना तो मुझे वहां पे है नहीं, बस बनाने का शौक है, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि मेरा एक घर जो है ना वो न्यूयॉर्क में है, मेरा दूसरा घर जो है वो दुबई में है, मेरा तीसरा घर जो है वो हैदराबाद में है, और चौथा घर जो है मेरा कराची के अंदर है, रहना वहना कोई है नहीं, बस घर बना बना करके रखे हुए। ठीक है, और फरमाया कि नहीं, जहां पे तुम्हें रहना ना हो ना तो वहां पर तुम कंस्ट्रक्शन ना करो। ठीक है, तीसरी चीज फरमाई कि जिस चीज को कल छोड़कर तुम जाने वाले हो ना, तो उसमें एक दूसरे पर हसद ना करो, यानी मौत के बाद तुम्हारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तुम कोई भी चीज अपने साथ कब्र में नहीं लेकर के जा सकोगे। ठीक है, तो अब अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज है जो कि वो इस्तेमाल कर रहा है उसके काम की चीज, अब तुम्हारे पास वो चीज नहीं है, तो डोंट फील जेलस अबाउट इट, कि उसके पास क्यों है ये चीज, नहीं होनी चाहिए उसके पास ये चीज, इसको कहते हैं जेलस होना। ठीक है, जेलस होने का मतलब क्या है, हसद करने का मतलब क्या है, कि किसी के पास कोई चीज देखी जो आपके पास नहीं है, तो अब उसके ऊपर जो है ना वो तकलीफ होनी शुरू हो जाए बंदे को, ठीक है ना, क्यों है उसके पास ये चीज, खत्म हो जाए उसके पास ये चीज, एक जो है ना वो हमारे अंदर एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक आदमी था, तो उसका पड़ोसी जो था ना वो बहुत नेक आदमी था। ठीक है, तो उसने जो है ना एक दिन नोट किया कि मेरा जो पड़ोसी है तो उसके घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आनी शुरू हो गई है, मेरा तो बड़े एकदम गरीब आदमी था, तो उसने कहा ये इसके पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें कैसे आ गई, गाड़ी भी आ गई, अच्छे कपड़े भी आ गए, और लोग भी जो है वो उसके पास मिलने जुलने के लिए आना शुरू हो गए, बड़ी अच्छी उसका लाइफ स्टाइल बन गया, तो इसको तकलीफ होनी शुरू हो गई। क्योंकि ये हसद करने वाला था ना, बुरा बुरा जरा इसकी क्वालिटी से, तो उसको तकलीफ है कैसे हो गया इसके साथ ये सब कुछ। ठीक है, तो इसने जो है ना वो एक दिन अपने पड़ोसी के पास जाकर के पूछ लिया कि भाई तुम तो अच्छे खासे गरीब इंसान थे, तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें कैसे आ गई ना। तो उसने कहा कि भाई असल में बात ये है कि मैं आपको सच सच बता रहा हूँ कि ना मैं ना अल्लाह ताला की इबादत किया करता हूँ, तो मेरी एक आदत थी कि मैं एक एक पहाड़ है हमारे घर के बराबर में, वहां पे जाकर के गार के अंदर बैठ करके ना अल्लाह ताला की खूब इबादत किया करता था। ठीक है, तो मैंने खूब इबादत करी, खूब इबादत करी, अल्लाह की रजा के लिए करता था, मुझे कुछ चीजें वीजें नहीं चाहिए थी। तो एक दिन जो है ना वो मुझे एक आवाज आई कि हम तुम्हारी इबादत से खुश हो गए, तो अब जो है ना तुम्हें जो है ना वो हम दुनिया की जो नेमतें हैं ना वो हमें तुम्हें हम देना देना शुरू कर देंगे तुम्हें। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई मेरे साथ ये हुआ कि एक दिन जो है ना मेरी इबादत मैं कर रहा था, बाद अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कोई, तो उसके बाद से अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सारी चीजें दे दी। ठीक है ना, उसने कहा कि अच्छा ये हुआ तुम्हारे साथ, चलो मैं भी यही करता हूँ। ठीक है, तो अब ये भी जो है ना साहब वो उसी गार में जाकर के बैठ गए, और इन्होंने जो है ना खूब इबादतें यानी खूब नमाजें पढ़ रहे हैं, खूब तस्बीहें पढ़ रहे हैं, खूब जो है वो दुआएं मांग रहे हैं, करते रहे करते रहे। बिलाखिर एक दिन जो है ना इनको भी आवाज आ गई कि हम तुम्हारी इबादत से खुश हो गए हैं, तो अब मांगो क्या मांगते हो। ठीक है, तो जो तुम मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। तो इसने पता है क्या दुआ मांगी उस पर, किसी को पता है इसने क्या मांगा उस दिन? इसने ये मांगा कि अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये मेरे पड़ोसी को जो आपने अच्छी चीजें दी है ना ये उसके पास से खत्म हो जाए। ठीक है, इसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा क्योंकि ये हसद करने वाला था। ठीक है, हसद करने वाला इतनी तकलीफ में होता है और इतनी उसको मुसीबत पड़ी हुई होती है, उसको सिर्फ ये चक्कर होता है कि उसके पास ये चीज क्यों है, खत्म हो जाए उसके पास ये चीज, ये हसद करने वाला होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फिर हमें कुरान मजीद में क्या सिखाया, वो मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह ताला से दुआ मांगे अल्लाह हसद करने वाले के हसद से मेरी हिफाजत करना, क्योंकि वो कहीं नहीं छोड़ता इंसान को। ठीक है, Why they included these extra five qualities in definition of mu'min? They did not include these five qualities in the definition of mu'min. लेकिन जो बातें नबी अलैहिस्सलाम के मैसेंजर ने उनको सिखाई थी तो वो सारी बातें बता रहे थे। तो पांच बातें जो है वो ईमान वाली बता दी, प्योर बिलीफ वाली, और उसके बाद पांच बातें जो है वो अमल वाली बता दी। तो अमल का जो है ना वो ईमान के साथ होता है, बड़ा बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। ठीक है, तो इस वजह से अगरचे के अमल ना करने से ईमान खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, ईमान तो रहता है, ईमान तो उस वक्त खत्म होगा जब आप किसी चीज का इनकार करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इंसान अमल करता है तो उससे उसका ईमान जो है ना वो प्रोटेक्ट हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। तो अमल का ताल्लुक ईमान के साथ है, सही। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने ईमान के साथ जो है वो पांच चीजें अमल वाली भी बताई। क्योंकि अच्छा, तो आपसे सुन फरमाया कि तो दूसरों के साथ तो तुम हसद ना किया, हसद ना कर। ठीक है, फिर उसके बाद चौथी चीज फरमाई कि उस अल्लाह से डरो कि जिसकी तरफ तुमको लौटना है और उसके सामने तुम्हें पेश होना है, तो अल्लाह ताला की नाराजगी से तुम डरो। ये चौथी चीज आपसे सुन फरमाई इन लोगों को। और पांचवी चीज फरमाई कि तुम उस चीज की फिक्र करो, उस चीज के बारे में सोचो या अल्लाह, और रग़बत करो उस चीज में जिसमें तुमको हमेशा हमेशा रहना, यानी आखिरत की जिंदगी में तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रहना है ना, तो उस चीज की तरफ रगबत करो, यानी सोचो कि आखिरत की जिंदगी को मैं कैसे अच्छा बना सकता हूँ। ठीक है, हमें तो हर वक्त फिक्र होती है हम दुनिया की जिंदगी को कैसे अच्छा बना सकें, हालांकि इस दुनिया के अंदर हमें थोड़ी सी देर के लिए रहना है और हमें पता भी नहीं कि हम कब यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी सी देर का भी हमें नहीं पता कि देर तक रहेंगे या अभी चले गए थोड़ी देर में, पता नहीं। तो इसके बारे में हम इतना फिक्र करते रहते हैं, और जिस जिंदगी में हमें पता है कि हमें हमेशा हमेशा वहां पे रहना है आखिरत की जिंदगी, उसके बारे में फिक्र नहीं करते। ठीक है, तो आप सर ने ये पांच नसीहतें इन लोगों को फरमाई, तो ये लोग जो है वो आपकी नसीहत को लेकर के वापस गए और उसको खूब याद रखा और इस पर अमल किया। ये हमारे एक बड़े बुजुर्ग इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि इन लोगों ने इसके ऊपर अमल भी बड़े अच्छे से किया। ठीक है, एक तो और वकूत का पढ़ लेते हैं, टाइम तकरीबन हो चुका है, कि वफद बनियल मुंतफिक, ये नबी अलैहिस्सलाम के पास सुबह की नमाज के बाद हाजिर हुआ, और इत्तेफाक से ना उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने सारे सहाबा को जमा करके एक बहुत लंबा खुतबा दिया। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम लंबी बातें नहीं करते थे, बहुत छोटे छोटे से खुतबे दिया करते थे। ठीक है, लेकिन ये चंद में मौके थे जिसमें नबी रसूल ने लंबे खुतबे भी दिए थे। ठीक, तो ये उनमें से एक मौका था। कुदरतन ये लोग उसी वक्त हाजिर हो गए। इनकी किस्मत बताओ उस बयान को सुना, जैसे हम कभी अपने हजरत के पास ऐसे मौके पर पहुंचे ना जिस पर बयान हो रहा हूँ, बड़े खुश होते हैं, हमें भी मौका मिल गया अच्छी अच्छी बातें सुनने का। तो ये लोग जो है वो ऐसे टाइम पे आए। आप ने उस खुतबे के अंदर कयामत के दिन जब हम सब के सब जमा किए जाएंगे और जो है वो जन्नत के अहवाल और जहन्नम के अहवाल बयान करवाए। जब खुतबा मुकम्मल हो गया तो उसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से बैत ली। तो इन लोगों ने आपस में के हाथ पे बैत की, जैसे कि हमारे मशायख भी बयान खत्म करते हैं फिर उसके बाद तौबा के कलमात पढ़ाते हैं या बैत के कलमात पढ़ाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जाके ये काम किया और फिर ये लोग जो है वो बैत करके और तीन की जो बातें थी वो कुछ सीख करके फिर वापस चले गए। फिर उसके बाद हाँ एक आखिरी बल्कि वफद है नख। नख एक जगह है, नख यमन का एक कबीला है। तो 11 हिजरी के मुहर्रमुल हराम के महीने में दो आदमी ना आपसे वसलम के पास वहां से हाजिर हुए नख के कबीले से। उनमें से एक शख्स जो था वो जरारा बिन अमर भी थे। उन्होंने इस सफर में बहुत सारे ख्वाब देखे। अब ख्वाब की बात शुरू में भी हुई थी कि ख्वाब मिलेगा एंजल्स को। तो इन्होंने जो ख्वाब देखे ना इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने बयान फरमाए और आप ने उसकी बाकायदा ताबीर दी। ताबीर का मतलब होता है कि बताना कि भाई इस ख्वाब का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इन्होंने आप को बताया कि मैंने ये देखा कि जमीन से ना एक आग निकल रही है, सही है, जो मेरे और मेरे बेटे के दरमियान आ गई है। यानी मैं एक तरफ हूँ उस आग के और मेरा बेटा जो है ना वो आग के दूसरी तरफ है, और वो आग जो है ना उसमें से आवाज आ रही है कि मैं आग हूं, मैं आग हूं, कोई बीना और कोई नाबीना मुझको खाने को दो। सुभान अल्लाह, मुझे खाने को दो, कोई जो देखता हो और कोई ना देखता हो वो भी मुझे खाने को दो, मैं तुमको खाऊंगी और तुम्हारे घर वालों को भी और तुम्हारे माल को भी मैं खाऊंगी। ये आग में से आवाज आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने आपसे वसल्लम को पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आग इस ख्वाब का मतलब क्या है। तो आपसे वसल्लम फरमाया कि एक फितना होगा, यानी एक एक वक्त आएगा कि जबकि ना बहुत लड़ाई वगैरह होनी शुरू हो जाएगी लोगों के दरमियान। यहाँ पे फितने से मुराद लड़ाई, केओस। ठीक है, तो एक फितना होगा कि जिसमें लोग ना अपने जो इमाम होगा, लीडर होगा ना, उसको कत्ल कर देंगे। ठीक है, अपने इमाम और खलीफा को कत्ल कर देंगे, और जो बुरा आदमी होगा वो अपने आप को नेक आदमी समझना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मोमिन का कत्ल पानी पीने से ज्यादा लजीज होगा। यानी लोग जो है ना वो ईमान वालों को कत्ल करेंगे और वो उनको बड़ा अच्छा फील होगा कि ये तो जैसे कि पानी पी करके इंसान को खुशी होती है ना, जब गर्मी होती है तो आप ठंडा पानी पिया खुशी होती है। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि मोमिन आदमी को कत्ल करना जो है वो इतना लोगों को अच्छा लग रहा होगा। फिर फरमाया कि अगर तुम्हारा बेटा पहले मर गया तो तुम इस फितने को देखोगे, और अगर तुम पहले मर गए तो तुम्हारा बेटा इस फितने को देखेगा। क्या मतलब कि ये जो फितना होगा ना ये बहुत दूर नहीं होगा बल्कि तुम्हारी जिंदगी में होगा ये मामला। तो इस वजह से ना हम ये नहीं कह सकते कि कयामत के करीब है इस तरह का मामला होगा कि मोमिन को लोग कत्ल करेंगे और खुश होंगे। ठीक है, और जो है वो खलीफा को कत्ल कर देंगे, नहीं, ये कयामत के करीब की बात नहीं हो रही है। बल्कि आपसे फरमाया कि या तो तुम देखोगे या तुम्हारा बेटा देखेगा। ठीक है, तो वो जो जरारा रजील तारा के उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से दुआ कीजिए कि मैं इस फितने को ना पाऊं, मैं नहीं देखना चाहता इस फितने को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमा दी। तो जरारा का तो इंतकाल हो गया, और उनके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की शहादत का फितना पेश आया। ठीक है, तो ये जो आपने फरमाया था तो ये उस्मान गनी रजी को जो फितना बाज लोगों ने कत्ल किया था ना, शहीद कर दिया था, तो ये दरअसल उस फितने की बात थी। और जरारा रजी अल्लाह तआला का जो बेटा था ना वो उस फितने में जो उस्मान गनी रजी अल्लाह के दुश्मन थे, बागी जो थे ना, वो उनके साथ मिल गया था। ठीक है, तो इन्होंने जो वो आग देखी थी तो बेटा एक तरफ था और ये एक तरफ थे ना, तो बेटा जो है वो बुराई की तरफ साइड पर था और ये जो है वो नेकी की साइड पर थी, क्योंकि इनका ईमान के हालत में इंतकाल हो गया और वो जो है वो बागियों के साथ उस्मान रजी अल्लाह के कातिलों में शामिल हो गया। तो इससे हमें दो बातें याद समझ में आती हैं। एक तो ये है कि देखें, आपने देखा ना कि भाई ख्वाब में तो बिल्कुल ही एक आग नजर आ रही, और आग जो है वो एक ऐसा जुमला बोल रही है कि मुझे कोई खाने को दो, मुझे कोई खाने को दो, है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है। ठीक है ना, आपको ही समझेगा कि शायद मेरे सामने एक आग आ जाएगी और आग आने के बाद जो है वो मेरा बेटा उस तरफ चला जाएगा, मैं तो नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ख्वाब में जो चीज नजर आ रही होती है उसकी ताबीर बहुत मुख्तलिफ होती है। ये किसको पता चलती है ताबीर? सिर्फ उसको पता चलती है कि जिसको अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया हो। ठीक है, उसके अलावा कोई जो है वो ख्वाब की ताबीर बयान नहीं कर सकता। आप अपनी इंटेलिजेंस से सोच समझ करके आप ख्वाब की ताबीर बयान नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक और बात की जाए, मैंने तो आज जैसे कि मैं आपको शुरू में बता ही दिया था कि भाई पढ़ाई वढ़ाई तो ज्यादा हो नहीं सकी है, क्योंकि ज्यादा तो क्या कुछ ही नहीं हो सकी थी, तो इस वजह से दो चार बस वाकयात किताब से देख करके आपको बता दिए। लेकिन कम से कम इतना जरूर हो गया कि अब अगले हफ्ते जो है ना वो हम ये वफूद वाले वाक्य को अब खत्म, अब दोबारा मजीद नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि इसके बाद जो है ना वो यमन में तालीम इस्लाम से मुताल टॉपिक है, शायद उसके बारे में बात करें, और उसके बाद जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी हज, हज्जतुल विदा, और कुदरतन हम हैं भी हज के दिनों में जी, ये भी अनप्लान्ड, हमारी हर चीज ही अनप्लान्ड होती है, तो अजीब हज का बहुत सारा हज्जतुल टॉपिक है। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना हो ऑनलाइन या ऑन साइट, यहाँ पे नए बच्चे बैठे हुए हैं तो क्लास के बारे में अगर वो या उनके पेरेंट्स पूछना चाहें। अच्छा, यहाँ पे हम सवाल देख लेते हैं। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन वॉज अबाउट क्वालिटी नंबर 10 to 15, डूइंग सबर, नॉट बींग हैप्पी ऑन द डिफिकल्टी ऑफ एनिमी। अच्छा हाँ, तो ये पूछना ये चाह रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने तुमसे पूछा था ना कि ईमान की हकीकत बताओ, कि तुम्हारी ईमान की क्या हकीकत है, तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम मोमिन हो। तो इन्होंने चले पहली पांच बातें तो प्योरली ईमान के बारे में बता दी, जिसको अकीदा भी कहते हैं, अल्लाह के बारे में सोच, फरिश्तों के बारे में सोच। ठीक है, फिर दूसरी बातें चले उन्होंने इबादात के बारे में बता दी, नमाज पढ़ना, जकात देना, रोजा रखना, हज करना। ठीक है, वो भी इनको समझ में आ गया जो सवाल करने वाले अफगान भाई हैं। लेकिन जो तीसरी बात थी ना, वो तीसरी बात जो थी वो तो इबादतों से भी मुतालिक नहीं थी, वो क्या बात थी? वो अखलाकियात से मुतालिक थी, वो कैफियात से मुतालिक थी, है ना। शुक्र करना, शुक्र एक कैफियत है, सबर करना ये एक फीलिंग है, बीइंग पेशेंट अपॉन समथिंग, राइट, बीइंग थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर समथिंग, ये दिल की कैफियत को कहते हैं, फीलिंग को कहते हैं ना। तो सवाल असल में ये करना ये चाह रहे थे कि व्हाई डिड दे इंक्लूड दीज फाइव एक्स्ट्रा क्वालिटीज इन द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट। आपके सवाल में जो आपने डेफिनेशन ऑफ मोमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो नो आई डोंट एग्री विद दिस कि दे वर इंक्लूडिंग इट इन द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट, नहीं, डेफिनेशन इज अ डिफरेंट लेवल। नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं पूछी थी, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे उसकी डेप्थ पूछी थी। हकीकत जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, तो दैट मीन्स कि गिव ऑल द डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशंस एंड डेप्थ अबाउट समथिंग। ठीक है, देखें ये बात, मैं बात जो कह रहा हूँ किसी दलील के साथ भी कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दलील भी है इसकी, क्या कि डेफिनेशन ऑफ ईमान वो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद किसी के सामने बयान करी थी। वो कौन सा मौका था, किसी को याद है? व्हेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आस्क्ड टू डिफाइन ईमान। ठीक है, हदीस से जिब्राइल, बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने पूछा मल ईमान, ईमान क्या है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ईमान की आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, सिर्फ ये डिफाइन किया, ये डेफिनेशन थी। ठीक है, फिर फरमाया इस्लाम क्या है, आपने फरमाया कि जी कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, और जो है वो रोजा, हज, ज़कात। ठीक, हकीकत का सवाल नहीं किया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, नबी अलैहिस्सलाम ने अखलाकियात और कैफियात को इनके अंदर शामिल नहीं किया। लेकिन यहां पर देखें कितने ये हकीम और अलीम लोग थे, और कितनी अच्छी इन लोगों के अंदर क्वालिटीज थी कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे हकीकत के बारे में पूछा तो ये सिर्फ जो है ना वो डेफिनेशन पे जाकर के खत्म नहीं किया उन्होंने बात, बल्कि इन्होंने जो है वो कैफियात को भी इसके अंदर इंक्लूड किया, आमाल को भी इसके अंदर इंक्लूड किया, ठीक है ना। इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ विजडम, ठीक है। तो विजडम एक ऐसी चीज है कि जो कि हमें अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ में मांगने चाहिए, अल्लाह आप मुझे भी हिकमत अता फरमा दीजिए, बात की समझ अता फरमा दीजिए, गहराई अता फरमा दीजिए, ठीक है। ये एक बड़ी पसंदीदा क्वालिटी है, अल्लाह ताला से मांगेंगे तो जरूर अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाएंगे। हजरत शाह बुखारी, ठीक कहाँ से आ गए? शाह साहब का फुल नेम मुझे याद नहीं है, शाह साहब कहाँ से आ गए? कोई और
पहले
डिस्कशन चल रही है क्या?
वाली क्लास पहले
अच्छा पहले वाली क्लास जो के, अच्छा वो हमारी मुस्लिम ब्यूरोज वाली क्लास हजरत शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में चल रही है, माशाल्लाह। ठीक है जी, तो माफ कीजिएगा 10 मिनट एज यूजुअल हमारे एक्स्ट्रा हो गए। इसके बाद वैसे एक और क्लास होती है तो वो तो अभी ऑनलाइन ही होगी, हमारे आरिफ साहब जो हैं वो बच्चों के लिए फिकह की क्लास पढ़ा रहे होते हैं, नए लोगों के लिए बता दिया तो वो ऑनलाइन होगी। चलो आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह।